उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र जाना जाता है अपनी दुर्गत दशा, खुली इंटरनेशनल बॉर्डर और मारधाड़ की परंपरा की। 90 के दशक में यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसकी पहुंच गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक आज भी है। मैं हूँ विजयराज और ये है द वाइज गाइड टू क्राइम का से क्राइम, इंस्पायर्ड बाय अमेजॉन प्राइम ओरिजिनल्स मिर्जापुर। तो भाई साहब, कार से क्राइम में हम आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की गलियों की मारकाट से लेकर बड़ी गैंग वॉर्स में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की। और इस क्लास में हमारे मास्टर साहब होंगे भूतपूर्व शूटर, क्राइम रिपोर्टर्स और स्पेशल टास्क फोर्स के कुछ अफसर भी। अब देखिए, हर चीज किसी न किसी काम के लिए बनी होती है और हर काम के लिए बने होते हैं कोई ना कोई औजार। गैंग्स अपने काम के लिए शूटर बनाते हैं और शूटरों के काम के लिए बनी है बंदूक। पर बंदूक के बल पर जो जीते हैं वो आखिर बंदूक के बल पर ही मरते हैं। मिर्जापुर यूपी के छोटे शहरों में गिना जाता है। यहां ना ज्यादा व्यापार है, ना ज्यादा नौकरियां और ना ही ज्यादा साधन। जाहिर सी बात है कि इससे आम आदमी में गुस्सा तो पलेगा और ये गुस्सा जब लड़के एक दूसरे पर निकालेंगे तो भैया मुक्का लात से बात नहीं बनेगी, वो ढूंढेंगे उससे भी बड़े औ से औजार। अपराध के औजार कई होते हैं, बड़े लेवल पर गोलियां चलती हैं और छोटे लेवल पर साइकिल की चेन और चाकू उस तरह से भी काम चल जाता है कई बार। और ये सब सीख के अपराधी स्ट्रीट लेवल से ही अपने क्रिमिनल कैरियर का इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देता है। यूपी पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स के वर्तमान एसएसपी अभिषेक सिंह अच्छे से जानते हैं कि इस कैरियर का अगला पड़ाव क्या होता
है। When petty crimes happen, these criminals are sent to the same jails where these bigger mafias are. They are expert in their own job. They know which guy can become a shooter, which guy cannot. So, depending on that, they will help him get out on bail. They will help to provide for his family when he's in jail. So he'll be under a certain kind of obligations from these main mafias, and then they will start asking him to do their small task like going in, threatening somebody, collecting some cash, give it to some place else. And as soon as the top rung organized crime leaders have confidence in those people, then they are given more weapons and also given harder tasks to perform, and that is majorly killing and contract killings.
अब चक्कू छुरी चलाकर आप किसी बड़े बाहुबली की नजर में आ गए तो समझिए वो आपको अपनी छत्र छाया में ले लेंगे और उस तरह से तरक्की करके पकड़ा देंगे 2,500 का से कट्टा। कट्टा चलाना आसान भी है और इफेक्टिव भी और शुरुआती गुंडों की पसंद भी, जैसा हमें बताया इस गैंगस्टर ने। अब देखो भैया, इनका नाम ना पूछिएगा, फरारी काट रहे हैं आजकल।
कट्टा एक खतरनाक असला है। जब अपराधी कांड करने आता है तो कट्टे का ज्यादा यूज करता है, उसके ऊपर ज्यादा भरोसा होता है, वो जल्दी मिस नहीं होता है।
अब देसी कट्टों का फायदा एक तो ये है कि वो सस्ते हैं और दूसरा ये कि उनको ट्रैक नहीं किया जा सकता। कांड करके मौका या वारदात पे छोड़ो, न सीरियल नंबर मिलेगा और ना ही कार्रवाई होगी। उत्पल पाठक जैसे क्राइम जर्नलिस्ट जानते हैं कि यूपी में कट्टे किस पैमाने पर इस्तेमाल हुआ करते थे।
80s और 90s के बीच में जो भी आप किलिंग्स देखेंगे उसमें कट्टा इस्तेमाल हुआ है। जनरली एक बार में कट्टे से एक फायर होता है, उसमें 315 या 312 की गोली लगती थी और उसको एक बार में एक लोड करके चलाते थे। कभी कभी डबल बैरल कट्टा भी लोगों ने उस समय इन्वेंट किया था। बिहार में एक जगह है मुंगेर, मुंगेर में पहले बहुत सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होती थी, बाद में वो फैक्ट्रीज बंद हो गई तो वहाँ के लोग जो कि कारीगर थे उन्होंने अपनी शेल फैक्ट्रीज खोलनी चुपके से। दुनिया की किसी भी रिवॉल्वर, किसी भी पिस्टल को आप मुंगेर में लेके चले जाइए और मुंगेर में उसका मेड इन मुंगेर रेप्लिका तुरंत बना के वो देते हैं और वो अच्छा काम करता है। भाई देखो,
90 के दशक में जब तक देश के हर घर में कलर टीवी पहुंचा, यूपी की सड़कों पर ओरिजिनल इम्पोर्टेड तमंचे आने लग गए थे। इनकी बनावट पक्की थी, ज्यादा रेंज थी और बेहतर रेट ऑफ फायर था और तब के स्टैंडर्ड इशू 303 पुलिस राइफल से कहीं ज्यादा भरोसेमंदी हुआ करते थे। सीनियर क्राइम रिपोर्टर पवन सिंह ने यूपी में बंदूकों और बंदूकबाजों दोनों का बढ़ाव देखा है।
कृपा चौधरी का हाथ एक उड़ गया था, वो केवल एक हाथ वाला आदमी था और एक हाथ से वो AK-47 से लेके पिस्टल तक इतना बढ़िया चलाता था कि जिसका कोई जवाब नहीं था। कृपा चौधरी ही उस गैंग की रीढ़ था। टैलेंट हंट जो है, जो होता है बजरंगी गैंग में, जितने को जोड़ा कृपा चौधरी ने जोड़ा। कृपा मरे उसके बाद कोई ऐसा नाम जुड़ा ही नहीं उस गैंग के साथ जिसने कोई बड़ी वारदात की।
भौकाली दिखने से ज्यादा अब बंदूक दहशत फैलाने के लिए थी। एक गोली से ठिकाने लगाने की बजाय बीच बाजार में टर से ट्यूबलाइट की तरह पूरी की पूरी मैगजीन उतारने का दौर शुरू हो गया। अब उत्पल साहब को बताने देते हैं कि ट्यूबलाइट का मतलब क्या है।
They don't use the word घोड़ा here. घोड़ा बॉम्बे में यूज करते हैं वेपन के लिए, स्मॉल वेपन्स के लिए। यहाँ पर वो असला है, यहाँ पर वो सामान है छोटा। और अगर AK-47 है तो इट इज ट्यूबलाइट, और अगर वो मैगजीन के साथ है तो वो बोलेंगे कि ट्यूबलाइट के साथ में बैटरीज भी है। लेकिन बार बार ये कोड्स चेंज होते रहते हैं ना, बट देयर इज नो कॉपी बुक डिक्शनरी ऑफ सच कोड्स। वो समय समय पर चेंज होते रहते हैं, करते रहते हैं। बट यहाँ वेपन को सामान बोला जाता है।
90 के दशक में तस्करी के रास्ते AK-47 पूर्वांचल में लाई गई थी पहली बार, और इनका फायदा उठाया वहीं के कुख्यात गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी ने। और कहाँ, कब और क्यों चलाया, ये क्राइम जर्नलिस्ट पवन सिंह और उत्पल पाठक बताएंगे आपको।
कैलाश दुबे का मर्डर हुआ था 96 में, उसमें पहली बार 47 का यूज किया गया था। कैलाश दुबे बीजेपी के नेता थे और वो अगले विधायक होने वाले थे, तो मुन्ना बजरंगी इसीलिए फेमस ज़्यादा हुआ कि पूर्वांचल में पहली 47 उसने यूज़ की, और उसके बाद उसके गिरोह ने लगातार इस वेपन का इस्तेमाल किया। पावर का जो हंगर है वो वेपन से पूरा होता है, और अच्छा वेपन जो है को बड़ा पावरफुल आदमी के रूप में आपको दिखाता है। सो इट्स ऑल अबाउट बिकमिंग अ हीरो, यू नो, एंड द वेपन मेक्स यू हीरो।
अब देखिए पिस्तौल का क्या है, वो एक बार में एक ही गोली मार पाती है, इससे सही निशाना लगाने में समय लगता है, प्रैक्टिस भी लगती है। पर AK-47 के साथ सिर्फ ये देखना पड़ता है कि ट्रिगर आपकी तरफ है और नली किसी और की तरफ, और फिर बस आंख मूंद के घोड़ा दबा दिया जाता है। 2005 में गाजीपुर के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या इसी से की गई थी, जैसा अभी हमें पवन सिंह बताएंगे।
कम से कम 5 से 6 AK-47 यूज की गई थी, 3 GS यूज की गई थी, पिस्टल सबके पास एक एडिशनल थी, और 47 भी एक ऐसी यूज की गई थी जो कि ड्रम मैगजीन वाली, जैसे पिक्चरों में गोल वाली दिखाई जाती है, 100 राउंड से अधिक फायर करने वाली, वो यूज की गई थी। पार्टी के MLA के साथ, BJP के MLA के साथ 7-6 और लोग मार दिए गए, लाशें लाइन से पड़ी हुई थी। उस समय का सीन देख करके अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
गैंग्स ये सारे औजार इस्तेमाल करते थे, तो पुलिस ने भी उनसे टक्कर लेने के लिए अपने औजार तैयार किए। 1998 में बनाई गई यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स UPSTF, जिसने शुरू किया बड़े पैमाने पे सासे सर्वेलांस, जिससे वो अपराधियों और उनके साथियों को ट्रैक करने लगे। UPSTF के पहले अफसरों में से एक थे SSP राजेश कुमार पांडे, जिन्हें बहुत अच्छे से याद है सर्विलांस के शुरुआती दिन।
मोबाइल फोन वाज लॉन्च्ड इन यूपी ईस्ट सर्किल इन 1998। पहले हम रियल टाइम में सुनते थे, हमारे पास स्टोर करने के लिए या उसके लिए दिखा, अब हाथ में मोबाइल है, उसमें तार निकला हुआ है, हम उसको सुन रहे हैं, एक हाथ में रिकॉर्डर है, उसका एक पैरेलल उसमें लगा रखा है, उससे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सामने वाला ये समझ जाता था कि ये फ़ोन रिकॉर्ड किया जा रहा है, किसी का फ़ोन ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सब दिक्कतें होती थी। उसके बाद फिर इसमें बहुत ढेर सारे अमेंडमेंट हुए, थोड़ा आसान हुआ। फिर जब इसका मिसयूज शुरू हुआ, कुछ एजेंसीज ने इसका मिसयूज शुरू किया, तो उसके बाद फिर ये और टफ हो गया। अब उतना आसान नहीं है लीगल इंटरसेप्शन जितना पहले हुआ करता था।
अब सेल फोन के आने से दुनिया और करीब हो गई, पर 1998 में शूटर शिपका शुक्ला के करीब आई सिर्फ STF। रिपोर्टर उत्पल पाठक और SSP RK पांडे को अच्छे से याद है शिपकाश को पकड़ने का पहला प्लान।
90 के दशक के एक बहुत बड़ा नामचीन अपराधी हुए शिवप्रकाश शुक्ला। शिवप्रकाश का खौफ इतना ज़्यादा था कि मीडिया ने यह छापना शुरू कर दिया था कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी, उसने उनकी सुपाड़ी ली है। STF UPSTF उस समय नई नई फॉर्म हुई थी, और इसी इंटेलिजेंस और सर्विलांस के बेस पर उनको, शिवप्रकाश को उन्होंने पकड़ा, और बाद में सर्विलांस के बेस पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को पकड़ा, कुछ का एनकाउंटर हुआ, कुछ को जेल में डाला।
जब हम लोग उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उस समय हम लोगों को ये बताया गया कि साहब उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है, साहब उसने बड़ी बड़ी दाढ़ी अपनी बनवा रखी, उसको पहचान पाना मुझको। वी हैव वन फोटोग्राफ ओनली, एक फोटोग्राफ थी, गर्दन उसमें शिवप्रकाश शुक्ला की थी और रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज ऑफ सुनील शेट्टी, और वी गॉट हिज लोकेशन इन दिल्ली। और फिर हमारी टीमें थी, हम लोगों ने चेस किया, दे स्टार्टेड फायरिंग एंड रिटेलिएट किया, जिसमें शिवप्रकाश शुक्ला और उसके साथ के दोनों, ऑल ऑफ देम वेयर किल्ड इन दैट एनकाउंटर।
शिवप्रकाश के एनकाउंटर के बाद गैंग्स को एसटीएफ के सर्विलांस का पता चला और वो चौकन्ने हुए। लड़के सर्विलांस से बचने के लिए जितनी तरकीबें लगा सकते थे लगाने लग गए। फोन को काम के समय ऑफ रखना, सिम को एक बार इस्तेमाल करके फेंक देना, और फिर 3G 4G इंटरनेट आने के बाद कॉल करने के बजाय सीधा चैट या नेट कॉलिंग करना, ये सारे जुगाड़ लगाए गए, मगर सर्विलांस जारी रहा। एसटीएफ को यूपी के शूटर्स गिराने के लिए सर्विलांस के साधन, हथियार और खुली छूट दे दी गई थी, और इसीलिए पूर्वांचल में क्राइम काफी हद तक कम हो गया है। पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकना इतना आसान नहीं है। ये गैंग्स मशीन की तरह काम करते हैं, जिनका होता है एक ही काम करने का तरीका और एक ही चलाने वाला, बाकी सब सिर्फ काम निकालने के औजार। जिस दिन जो काम आना बंद हो गया उस दिन उसको निकाल फेंका। मगर इस काम को कोई चल के या दौड़ के नहीं छोड़ता, छोड़ता है तो सिर्फ अर्थी पे चढ़ के। देखिए कितने कमाल की बात है। इस 3 भाग के सीरीज में आपने देखे पूर्वांचल के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के कई सारे पहलू। अब आप जान गए हैं कि ग्रोह कैसे बनते हैं, शूटर अपना काम कैसे करते हैं और इस सब में हथियार कौन से लगते हैं। ये था वाइस गाइड टू क्राइम इन इंडिया, कार से क्राइम। अगर सिर्फ सुन के मन नहीं भरा होगा आपका, तो इनके वीडियो एपिसोड भी देख सकते हैं आप वाइस.com पे।